समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सुभद्रा रामचंद्रन के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा, इतिहास के पन्ने, खेलों की दुनिया, मौसम का क्या हाल है, कौन से लोग आज इस दुनिया में आए और कौन इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी एक कंप्लीट न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम जो अगले आधे घंटे में आपको दिन भर के लिए तैयार कर देगा। और आपको करना क्या है, सुभद्रा और मेरे साथ बस आधे घंटे तक बने रहना है ना सुभद्रा?
Yes, Naveen, very good morning to you and a warm welcome to all our listeners tuning into this morning. And of course, Naveen, what do we have in store? Plenty of goodies as you've already mentioned. So let's just begin with some news headlines, right? Prime Minister Narendra Modi has expressed concern over the threats emanating from digital frauds, cyber crimes and artificial intelligence technology, particularly the potential of deep fake to disrupt social and familial relations. Addressing the concluding session of the 59th All India Conference of Directors General, Inspectors General of Police in Bhubaneswar, Prime Minister called for the use of technology to reduce the workload of the police constabulary and suggested that the police station be made the focal point for resource allocation. Mr. Modi noted that wide-ranging discussions were held on national and international dimensions of security challenges and expressed satisfaction on the counter-strategies that emerged during the conference. As a countermeasure to the potential threats generated by digital frauds, cybercrimes and AI technology, Prime Minister called on the police leadership to convert the challenge into an opportunity by harnessing India's double AI power of artificial intelligence and aspirational India.
सुभद्रा, हमारा देश पर्वों और त्योहारों का देश है। हर महीने हर क्षेत्र में, हर राज्य में एक न एक त्योहार होता ही है। महाकुंभ, 12 वर्ष पर लगने वाला महाकुंभ अगले साल 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। 26 जनवरी को यह संपन्न हो जाएगा। भारतीय संस्कृति के संवर्धन में महाकुंभ का एक विशिष्ट योगदान है। लेकिन खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है। नवगठित जिला महाकुंभ मेला क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यह निर्णय कुंभ मेले के प्रबंधन और प्रशासन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। और इस वर्ष माघ मेले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह विचार सामने रखा था। उत्तर प्रदेश के बाद हम नागालैंड आप सबको लिए चलते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड के अत्यधिक प्रतिष्ठित 25वां हॉर्नबिल उत्सव राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में भव्य प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ है। इस उत्सव का औपचारिक शुरुआत जो कि नागालैंड के राज्यपाल लॉ गणेशन और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने की, राज्य सरकार और नागालैंड के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने उत्सवों की भूमि और उत्सवों के उत्सव हॉर्नबिल के सभी दर्शकों का गर्मजोशी से स्वागत किया।
Finance Minister has said that Unified Payments Interface UPI has achieved a milestone by processing nearly 16.58 billion financial transactions in a single month in October this year. UPI processed around 23.49 lakh crore rupees across 16.58 billion financial transactions in October. This marks 45% year-on-year growth as compared to October last year. The UPI, of course, was launched in 2016 by the National Payments Corporation of India. It has revolutionized the nation's payment ecosystem by integrating multiple bank accounts into a single mobile application. This system enables seamless fund transfers, merchant payments, and peer-to-peer transactions, offering users flexibility through scheduled payment requests. UPI has not only made financial transactions fast, secure, and effortless, it has also empowered individuals, small businesses, and merchants, driving the country's shift towards a cashless economy. India's payment interface has also gained international momentum, with UPI being operational in 7 countries, including key markets. These are UAE, Singapore, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, France, and Mauritius.
पूरे विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन ने सबकी निगाह अपनी ओर खींची है और एक चिंता का विषय बना हुआ है। बस इसीलिए मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन आज सऊदी अरब के रियाद में शुरू हो रहा है। पहली बार पश्चिम एशिया इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत इस संधि की 30वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन में शामिल होगा। सम्मेलन 13 दिसंबर तक चलेगा।
Let's get some cyclone news now. In Tamil Nadu, flood situation is grim as heavy rains lashed several districts as cyclone Fenjal made way through the interior parts of the state on its way to the west coast towards the Arabian Sea. The district collector said that since it was dark and raining, relief work was hampered. In Kerala, Meteorological Department has predicted heavy rain during the next 4 days on account of cyclone and low pressure formation. Red alert has been issued in 4 districts of the state today. Orange alert is issued in 5 districts and yellow alert in 3 districts in Kerala. Holiday had been declared for all educational institutions in Kottayam, Patnamthitta, Wayanad districts today. Fishermen are warned from venturing into the sea from Kerala, Karnataka, Lakshadweep coast. In view of the heavy rains, the Kerala State Disaster Management Authority had directed the people living in landslide-prone regions, dam catchment areas, river banks to relocate to safer places, as directed by authorities. Chief Minister Pinarayi Vijayan had urged people living in hilly areas to remain vigilant and follow the official instructions.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगी। 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे।
A global meeting in South Korea's Busan to finalize a treaty to combat plastic pollution concluded yesterday without an agreement. This was the 5th meeting of the Intergovernmental Negotiating Committee, which has been working since 2022 to draft a legally binding treaty on plastic pollution. The week-long talks exposed deep divisions between countries calling for limits on plastic production and harmful chemicals and those focusing only on managing plastic waste. Negotiators from nearly 200 nations held closed-door discussions to bridge differences on key issues, but the draft released yesterday left most concerns unresolved. The most contentious issue of the talks has been whether there will be a limit on the amount of plastic that companies are allowed to produce.
सुभद्रा, बढ़ता हुआ स्ट्रेस जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का एक कारण बनता जा रहा है और बस इसी के मद्देनजर मानसिक स्वास्थ्य संबंधों से जुड़े जो प्रश्न है वो आज आप पूछ सकते हैं। हमारा प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा और विषय रहेगा मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से संबंधित। और इस कार्यक्रम के दौरान आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एम्स के मनोचिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर हमारे साथ रहेंगे। फोन नंबर रहेंगे 2342105 और 2314444 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। वक्त एक बार फिर नोट कर लीजिए, रात 9:30 बजे। और अब खबर आपके शहर की, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ हैं सुभद्रा।
Yeah, starting with news from Chennai, Naveen. Tamil Nadu government has urged the central government to send a team to survey the damage caused by Cyclone Fenjal and sought financial assistance for relief and recovery. Chief Minister M.K. Stalin said that a meeting would be held with officials to assess the impact of the cyclone throughout the state. He said that Viruppuram district had witnessed historic rains and more than 1,300 people were shifted to relief camps across the districts of Thiruvannamalai and Viruppuram. Chief Minister Stalin said that more than 9 lakh food packets were distributed and over 1 lakh people had benefited from free meals at 386 Amma canteens. Getting to Bengaluru now, the Foundation Day celebration of Uttarakhand, Jharkhand, Nagaland and Assam was celebrated in Karnataka Raj Bhavan in Bengaluru yesterday. The rich traditions, culture, art and heritage of these 4 states were showcased as part of the celebrations. Governor Thavarchand Gehlot spoke on the vibrant cultural ethos of these states. He emphasized that each state in India has its own unique and distinct characteristics, religious festivals and cultural heritage. He noted that ideals of equality and harmony binds a nation together. The cultural program organized on this occasion is inspired by Ek Bharat, Shrestha Bharat initiatives that the governor pointed out enhances cultural diversity while fostering national unity and mutual understanding. He extended his gratitude to Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah for their vision to conceptualize the celebration of Foundation Day of all the Indian states in Raj Bhavans across the country. He added, "This practice promotes social integration and cultural exchange." He congratulated the artists for presenting colorful performances showcasing the dance and song forms of Uttarakhand, Jharkhand, Nagaland and Assam. Getting to Hyderabad news now, Telangana Governor Jishnu Dev Verma has emphasized the importance of promoting mutual respect and understanding of India's diverse cultures among the states on Nagaland State Formation Day. As part of the Ek Bharat Shreshth Bharat initiative, the governor hosted a special celebration at Raj Bhavan in Hyderabad yesterday. The governor extended warm greetings to the people of Nagaland and honored the leaders and citizens who contributed to the state's creation. Naveen, over to you now for the rest of the news.
दिल्ली की खबरों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की। अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लंबित पीएम उदय आवेदनों में तेजी लाने और उसके निष्पादन के लिए विशेष सिंगल विंडो कैंप आयोजित कर रखा है। ये कैंप 29 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भाजपा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 8 से 20 दिसंबर तक एक परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इस यात्रा का संचालन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय करेंगे। वहीं 14वां एशिया ओशियानिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन एमसॉक 14 इस महीने की 4 से 6 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में उच्च गुणवत्ता वाली मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी और पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 2010 में चीन के बीजिंग में हुआ था। अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, खासकर विशेषकर मुंबई। बृहन मुंबई नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण जल वितरण केंद्र पर तत्काल मरम्मत कार्य के कारण 5 दिसंबर तक पूरे मुंबई में 10% पानी की कटौती की घोषणा की है और इस अवधि के दौरान बीएमसी के साथ साथ ठाणे और भिवंडी नगर निगमों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति है प्रभावित रहेगी। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस पर होने वाली भीड़ की तैयारी के लिए मध्य रेलवे ने मुंबई के चुनिंदा प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। स्टेशनों पर स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने और प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध 9 दिसंबर तक लागू रहेंगे। प्रभावित स्टेशनों में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, ठाणे और कल्याण शामिल हैं। कोलकाता का रुख करें तो आज से पश्चिम बंगाल के सभी ब्लॉकों में लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि और पंचायती सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। शिल्पकार समाधान नाम का यह अभियान 20 दिसंबर तक चलेगा। आज सवेरे का एक और पन्ना पलटते हैं और आपके शहर के मौसम की बात करते हैं। सबसे पहले बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री के आसपास। कोलकाता में 26 डिग्री और 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। देश के बाकी हिस्सों का क्या हाल है सुभद्रा?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 28। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 23 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 20 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस।
खेलों की दुनिया एक ऐसी है जो हमेशा रोमांच से भरी हुई होती है, जोश से भरी हुई होती है। लेकिन सुभद्रा, अक्सर क्या होता है कि ये जोश और रोमांच से भरा हुआ जो पन्ना है ना, वो न्यूज़पेपर के सबसे आखिर में होता है। लेकिन true, हमारे yes. आज सवेरे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए ना, कल बहुत सारे खेल आपने मिस किए होंगे, बहुत से ऐसे कीर्तिमान हैं जो हमने स्थापित किए होंगे, लेकिन उसकी बात रात के साथ नहीं गई है। आज सुबह बेहतरीन खेल खबरों के साथ इस समय है कि क्या कुछ हो रहा है जया के साथ। तो जया, कहां से शुरू कर रही हैं आप?
नवीन खेलों की दुनिया में सबसे पहले बात शतरंज की। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी प्रतिष्ठित 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने यह उपलब्धि हासिल की थी। 21 वर्षीय एरिगेसी वर्तमान में विश्व रैंकिंग में भी चौथे स्थान पर हैं। उधर सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच छठी बाजी भी ड्रॉ रही। 46वें चाल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। शतरंज के बाद नवीन हम अपने सुनने वालों को हॉकी के मैदान की ओर लिए चलते हैं और खुशखबरी यह है कि भारत जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है और फाइनल में पहुंचने के लिए उसे सिर्फ मलेशिया को पराजित करना है। ओमान के मस्कट में कल भारत और मलेशिया के बीच यह मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से पराजित किया। क्रिकेट की बात करें तो आज दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शारजाह में ग्रुप ए में भारत का मुकाबला जापान से होगा। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के निवर्तमान सचिव जय शाह ने कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वे आईसीसी का चेयरमैन बनने वाले 5वें भारतीय हैं। वहीं लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स और लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। वहीं त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। खेलों की दुनिया में बस इतना ही। आज सवेरे की बाकी सफर के लिए चलते हैं नवीन और सुभद्रा के पास।
Thank you, Jaya, for that update. And Naveen, you know, before we get to the history section, let's take up two very important days today. Today is National Pollution Control Day. Hmm. And the second one is World Computer Literacy Day. Okay. Talking about National Pollution Control Day, this is done to raise awareness about pollution and its hazardous effects, of course. And the day is actually celebrated to commemorate the people who lost their lives in the Bhopal gas calamity, which occurred on the night of December 2nd and 3rd of December morning. This happened in the year 1984. And of course, this is considered as one of the biggest industrial disasters. And Naveen, besides industrial disaster, there are man-made disasters also. So pollution control is a huge project that necessitates collective effort from all of us, all organizations, schools, colleges, individuals, government. All of us need to adopt methods that can reduce the amount of contaminants in the air, right?
सुभद्रा, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक दायित्व है कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ एक वो दिन मनाना या उस दिन को याद करके शायद पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और जैसा कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में आप देख ही सकते हैं कि रोज सुबह जब हम निकलते हैं तो सिर्फ एक धुंध हमारे सामने होती है ना, और खांसते हुए नजर आते हैं, छींकते हुए नजर आते हैं। तो एक सामाजिक दायित्व है। तो देखिए, आप किस तरह से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। बहरहाल, हम हिस्ट्री का सेक्शन बिल्कुल कम नहीं करेंगे।
लेट्स जस्ट गेट टू द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। नाउ इट इज मार्क्ड अगेन ऑन 2nd दिसंबर टू सेलिब्रेट ऑफ कोर्स द एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट डिजिटल लिटरेसी स्पेशली अमंगस्ट द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। सो नवीन, डिजिटल वर्ल्ड डिमांड्स कंप्यूटर एजुकेशन, सो गेट एजुकेटेड ऑल ऑफ अस, राइट?
बिल्कुल। चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं। और मैंने और सुभद्रा ने जो आज सुबह और कल थोड़ी बहुत जो रिसर्च की है ना, क्या कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं, उससे आपको रूबरू कराते हैं। मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई जाने वाले ज्यादातर लोग गेटवे ऑफ इंडिया देखने जरूर जाते हैं, इसकी स्थापत्य कला और भव्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। सुभद्रा, लेकिन बहुत ही कम लोग इससे वाकिफ होंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया था। दरअसल, आज ही के दिन 2 दिसंबर 1911 को पहली बार भारत आए ब्रिटेन के तत्कालीन राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी को धन्यवाद देने और उनकी यात्रा की याद में देश की आर्थिक राजधानी में समुद्री मार्ग से प्रवेश के दौरान गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। 26 मीटर ऊंचा द्वार है, बनाया था इसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प जॉर्ज विंसेंट ने। 1924 में जो है ये बनकर तैयार हुआ था और समुद्र के रास्ते मुंबई आने पर सबसे पहले महानगर की जो इमारत दिखाई देती है वो है गेटवे ऑफ इंडिया।
1804 दिस डे नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द फर्स्ट फ्रेंचमैन इन 1000 इयर्स टू बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस। 1823 दिस डे जेम्स मनरो द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट डिलीवर्ड हिज एनुअल मैसेज टू कांग्रेस कॉलिंग फॉर अ बोल्ड न्यू अप्रोच टू अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अपोजिंग यूरोपियन एक्सपेंशन इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द डॉक्ट्रिन बिकेम नोन एज द मनरो डॉक्ट्रिन।
1971 वो आज ही का दिन था जब अरब प्रायद्वीप के 6 क्षेत्रों ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की थी। हालांकि फरवरी 1972 में इसमें एक 7वां देश भी शामिल हो गया था।
1887, Louis Paul Cayet became the first to liquefy oxygen. Shortly after, he was also the first to liquefy nitrogen, hydrogen, nitrogen dioxide, carbon monoxide, and acetylene. And also in 1942, this day, Naveen, Sri Aurobindo Ashram School was established in Pondicherry. Now it's called Puducherry, of course, which was later known as Sri Aurobindo International Center of Education.
तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से और अब बात उन व्यक्तियों की जो कहीं ना कहीं आज के दिन से जुड़े हुए हैं और समाज पर हमारे ऊपर अपनी छाप छोड़ी है.
Among the handful of Indian pilots who fought in the World War I was a young boy who would go on to become India's first fighter ace. A flying ace is a fighter pilot credited with shooting down five or more enemy aircrafts. Indra Lal Roy was just 19 when he became the first and India's only flying ace. This incredible air warrior from Bengal shot down nine German planes in World War I. Indra was posthumously awarded Britain's third highest gallantry award, the Flying Cross. This brave heart took birth in 1898.
आज जन्मदिन है प्रसिद्ध फिल्म पटकथा और संवाद लेखिका अचला नागर का. उनकी पटकथा में रिश्ते, नाते, जवाबदारियां, वफाएं, प्रेम, जज्बात, निभा बहुत कुछ होता था. फिल्मों के लिए भी उन्होंने लिखा, ईश्वर मेरा पति सिर्फ मेरा है, निगाहें, नगीना, निकाह, बहुत सी फिल्में में उन्होंने लिखा. हिंदी साहित्य के महान लेखक अमृतलाल नागर की पुत्री अचला नागर का आज जन्मदिन है. उनका कहानी संग्रह है नायक खलनायक, बोल मेरी मछली, उनके संस्मरण है बाबूजी, बेटाजी एंड कंपनी, जिसमें उन्होंने पिता पुत्री के जो पत्र हैं उनका एक संग्रह किया है. विविध भारती के साथ अचला नागर जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसी का एक अंश जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं.
एक कलम में जो एक जो फ्लो आता है वो मुझे आकाशवाणी में रहते हुए मिला कि जहाँ ये होता था मीटिंग में बैठे और कि फला फीचर आ गया, फला टॉक आ गई, नहीं जी वो राइटर नहीं. एसडी कहते हैं नो डायरेक्शन है, कहीं से करो, मैं नहीं जानता कैसे होगा, वो कैसे लिख रहे हैं, लास्ट मोमेंट उससे जा रहा है, एयर पर जा रहा है. और ये सब चीजों ने बहुत एक सोल्जर जैसी आर्मी की तरफ में जो होता है कि नहीं अब तो होना ही है, वो बना दिया कि मुझे रेडियो जो है बहुत बड़ी शक्ति दी और ताकत दी. लेखन में भी बहुत फायदा मिला तो मैं कभी नहीं भूलू, खुल के कहती हूँ मैं कि मुझे
रेडियो से आपको शक्ति मिली, आपका लेखन जो था उसको एक राह मिली. लेकिन ड्रामा और फीचर्स के बीच में आपका कहीं कोमल मन संगीत की ओर भी मुड़ा?
नहीं, संगीत से तो मेरा नहीं रहा, कभी जुड़ाव नहीं रहा. एक दो बार ट्राई किया मैंने लेकिन कम रहा, पोएट्री भी कम लिखी मैंने, प्रोज की तरफ ही ध्यान रहा क्योंकि मैं जिंदगी के करीब रहना चाह रही थी. साहित्य की तरफ जब मैंने लिखी तो मैंने काफी मैं जो सब साहित्यिक स्थापित धर्मयुग से लेकर सारे स्थापित पत्रिकाओं में छपती थी, अगर आज तक लिख रही होती तो मैं एक बहुत अपनी जगह बन चुकी होती. मैंने तो अभी मेरे साहित्यिक कृतियां छपी हैं, किताबें भी छपी हैं मेरी.
ये महान साहित्यकार अचला नागर जी की आवाज थी जो आकाशवाणी से भी जुड़ी रही. खूबसूरत फिल्मों की पटकथा लिखी, फिल्म निकाह का एक गीत है, आइए सुनते हैं जिसकी पटकथा इन्होंने लिखी थी.
दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले. दिल की
Greek operatic soprano Maria Callas was born this day in 1923. She revitalized opera and increased its appeal because of her dramatic skill. She was praised for her impressive bel canto technique, extremely versatile singer, adored by both public and critics alike for her vocal technique and dramatic gifts. Charlie Burr, the jazz guitar maestro, was one of the first modern guitar players to believe in simple acoustic unamplified Spanish guitar in jazz. Inspired by the Belgian guitar player Django Reinhardt, he later studied classical guitar under the self-trained Spanish maestro Andre Segovia. Early 60s, he was among the first musicians to popularize Brazil's soulful bossa nova style. So this wonderful combination of Latin sound, jazz and classical lines made him a super jazz master. Charlie Bird left this world on this day in the year 1999. birthday of Australia-born Tal Wilkenfield, singer-songwriter, bass guitar lady, who plays rock, jazz, and a whole lot of musical ideas. Tal began a musical journey when she first picked up a guitar at 14, immigrating to the United States at the age of 16. Tal studied electric guitar before switching to electric bass, graduating from Los Angeles Music Academy College of Music in 2004. She has performed with a whole bunch of artists including Chick Corea, Jeff Beck, Prince, Herbie Hancock, Buddy Guy, Eric Clapton, Herbie Hancock, and Mick Jagger and more.
फिल्मों में कई सारे किरदार ऐसे होते हैं जो बस फिल्म खत्म होने तक हमारे जहन का हिस्सा रहते हैं और फिल्म खत्म होने के बाद उसके प्रभाव अपनी छाप का ही नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दायरे तोड़कर आगे निकल जाते हैं, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए रह जाते हैं याद। एक्टर बोमन ईरानी ऐसे ही कलाकार हैं, आज उनका जन्मदिन है तो ये डायलॉग तो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे।
You also are like the koyal birds. Aur ye woh ande jinko dhakka maar ke tum log IC mein pahunche.
You
aur ye finished broken eggs. Remember, life is a race. Agar tez nahi bhagoge to koi tumhe kuchal ke aage nikal jayega.
And friends, birthday of another brilliant bass guitarist from England. He is Rick Savage, founder member of British rock band Def Leppard. He celebrates his birthday too. Def Leppard's blend of glam rock, big pop ballads led to massive wave of success in the 80s. A big time smash from Def Leppard for guitarist Rick Savage. Here goes Hysteria.
आज भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोमी रेड्डी नागी रेड्डी की जयंती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन्होंने चेन्नई में विजया वाहिनी स्टूडियो की स्थापना की थी जो एशिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो माना जाता है। तमिल, तेलुगु और हिंदी में कई सुपरहिट फिल्में बनाई, जूली, स्वर्ग नरक और राम और श्याम। खूबसूरत सा गीत राम और श्याम से।
जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई।
Well, friends, birthday of Canadian singer Nelly Furtado. Born in small town of Victoria, British Columbia, Canada, Nelly rose to fame in the late 90s and has since become a global music sensation. Unique blend of pop, R&B and world music influences, she has captivated audiences around the world. Nelly has also won a number of awards, one Grammy, 10 Juno and multiple Billboard Music Awards.
आज भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता देवेन वर्मा की भी पुण्यतिथि है। हिंदी फिल्मों में शानदार हास्य अभिनेता रहे और सबका दिल जीत लिया। शायद इस गीत के अलावा और कोई गीत हो ही नहीं सकता देवेन वर्मा पर जिससे हम उन्हें याद करें।
मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी।
Singer, dancer, actress Britney Spears celebrates her birthday today. She's called, of course, the Princess of Pop, credited with influencing the revival of teen pop during the late 90s and early 2000. Former world number one professional tennis player Monica Seles celebrates her birthday today. And of course, she's won 9 Grand Slam singles titles, 8 of them as a teenager.
आज चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली की भी पुण्यतिथि है। कई बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया, खट्टा मीठा उन्हीं से में एक है। तो चलते चलते मैं नवीन और सुभद्रा आपको इस खूबसूरत गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं जो पिक्चराइज था उन पर। आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये संस्करण आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। अपने एडिटर ऐश्वर्या और प्रोडक्शन असिस्टेंट सुनील के साथ मैं नवीन और सुभद्रा आपको यहीं छोड़े जाते हैं।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।